पृष्ठ संख्या 171। अमूल परिवर्तनवादी सैन्यवादियों की लहर को रोकने में नागरिक नौकरशाही तथा अभिजात तंत्र की असमर्थता। सेना में विद्यमान अमूल परिवर्तनवादियों ने सरकार पर तत्काल ही नियंत्रण नहीं प्राप्त कर लिया। सेना के अंदर स्वयं भी एकता का अभाव था। अनेक अधिकारी, विशेषतः अधिक आयु वाले तथा उच्च पदों पर आसीन अधिकारी अथवा ऐसे अधिकारी जो सेवानिवृत्ति के निकट थे, उदार विचार वालों थे और वे उन योद्धाओं को संदेह की दृष्टि से देखते थे। अधिकारियों के दलों में परिवर्तन होता रहता था। नागरिक नौकरशाही सशक्त थी, इसकी अपने ही परंपराएं थी। विदेशी एवं राजनयिक सेवा इत्यादि के माध्यम से नागरिक नौकरशाही सेना के उस वर्ग पर नियंत्रण पाना चाहती थी जो आतंकारी उपायों द्वारा साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी विदेशी सत्ता की दासता क्यों न स्वीकार करनी पड़े। संभवतः अधिकांश जापानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अथवा कम से कम पूर्वी एशिया में जापान की स्थिति को सुदृढ़ एवं व्यापक देखना चाहते थे। लेकिन यह कार्य किस प्रकार संपादित किया जाए, इस विषय में आवश्यक उपायों एवं उपयुक्त समय के बारे में मतैक्य नहीं था। अमूल परिवर्तनवादी आवश्यकता पड़ने पर विश्व की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं करते थे। मध्यम मार्गी अपने मार्ग पर अधिक सावधानी से चलने में विश्वास रखते थे और प्रत्यक्ष रूप से जोर जबरदस्ती से दूर रहना चाहते थे। कभी-कभी विदेश विभाग एवं राजनयज्ञ इस बात से पूर्णतया अनभिज्ञ होते थे कि सैन्य अधिकारी क्या योजना बना रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता था कि वे राष्ट्र को ऐसे मार्ग की ओर ले जा रहे हैं जिसे सेना अथवा कुछ सैनिक तत्व अपने स्वतंत्र कार्यवाहियों के द्वारा किसी भी समय विफल बना सकते हैं। चीरकाल से अबाध रूप से चली आ रही प्रतिष्ठा के कारण प्राचीन अभिजात तंत्र का प्रभाव था। सैनिक वर्ग के उद्भव तथा वाकुफू के निर्माण से पूर्व जिस दरबारी अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था, उसके प्रमुख प्रतिनिधि इस समय भी मौजूद थे। अंतिम प्रवर राजमर्मज्ञ संयोजित था, जो फ्यूजीवारा परिवार का था और जिसकी पर्याप्त सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। उसने अपनी अधिकांश युवावस्था फ्रीस में बिताई थी। सामान्य रूप से वह उदार दलीय था तथा दलीय सरकार का समर्थक था। अपने उत्कर्ष के दिनों में वह प्रधानमंत्री के पद पर रहा और अपने अधिक आयु के बावजूद भी 1920 के बाद की 2 दशाब्दियों तक उसका अत्यधिक प्रभाव रहा। यद्यपि फरवरी 1936 की छटनी में वह बच गया, लेकिन वह काफी छिनकाए हो चुका था और इसके बाद बहुत दिनों तक वह जीवित नहीं रहा। सन 1937 में कोनोए, जो पहले डाइट के उच्च सदन का अध्यक्ष था, प्रधानमंत्री बना। यह भी फ्यूजीवारा परिवार में से ही था। यह दलीय सरकार के पक्ष में न था और सेना और मंत्रिमंडल के बीच संबंधों में सुधार लाना चाहता था, लेकिन साथ ही वह चरम सैन्यवादी भी न था और संविधान को सुरक्षित रखना चाहता था तथा अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के पक्ष में था। सन 1931 के बाद और विशेष रूप से 1937 के पश्चात जापान में युद्धपरक मनोवृत्ति अत्यधिक प्रबल हो गई। इस समय जापान एक ऐसे विदेशी अभियान में संलग्न था जिसके फलस्वरूप या तो जापान का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व स्थापित हो सकता था या फिर जापान को पूर्णतः पराजय का मुंह देखना पड़ सकता था। इस अभियान के आरंभ में जापान को आश्चर्यजनक सफलता मिली। इसलिए यदि इसके बाद देश में सैन्य वर्ग का आधिपत्य स्थापित हो गया और कोनोए असफल रहा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। कोनोए के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद उसका स्थान तोजो ने ग्रहण किया, जो वहां की सेना में जनरल था। तोजो के शासनकाल में राष्ट्र पर अधिकाधिक अनुशासन होने लगा। युद्ध का दबाव दिनों दिन बढ़ता गया। और उसके साथ ही सरकार ने जो सेना द्वारा संचालित थी, जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अपना नियंत्रण एवं अनुशासन बढ़ा दिया। संविधान का सातत्य। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इतना होने पर भी संविधान का निराकरण नहीं किया गया और डाइट के अधिवेशन यथापूर्व जारी रहे, यद्यपि ये अधिवेशन केवल थोड़े काल के लिए ही होते थे। युद्ध की स्थिति में भी संसदीय प्रणाली को कायम रखा गया। यह संविधान प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित किसी मंडल के कार्यों का परिणाम न था, अपितु यह सम्राट मेजी द्वारा प्रदत्त एक भेंट थी और सम्राट मेजी की स्मृति का विशेष रूप से समादर किया जाता था। सिद्धांततः केवल सम्राट की इच्छा से ही संविधान को रद्द या संशोधित किया जा सकता था। तत्कालीन सम्राट दोनों में से कुछ भी करने को तैयार न था। एक तो संभवतः इसलिए कि वह कट्टर सैन्यवादियों के पक्ष में न था, और दूसरे एक ऐसे संविधान को समाप्त करना था, उसमें परिवर्तन करना, जिसे उसके पूज्य पितामह ने बनाया था। वह अपने पूर्वजों का अनादर समझता था और इसलिए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जापान के कुछ चित्र। 9 वर्ष की छुट्टियों के बाद दफ्तरों के प्रथम कार्य दिवस को टोक्यो का व्यापारिक क्षेत्र, टोक्यो की भूगर्भ रेलवे का प्लेटफॉर्म, गुड़िया बनाते हुए एक महिला, स्कूल के बच्चे स्कीइंग के लिए जाते हुए, बुनियादी स्कूल में विज्ञान की कक्षा में बच्चे ऑक्सीजन की प्रकृति के संबंध में एक प्रयोग कर रहे हैं। चित्र में जापान के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार स्वर्गीय केनकी की तोमी मोतो को सुनहरी और रजत घोलों से घड़े पर चित्र बनाते दिखाया गया है। तथा जापान के वाणिज्य और व्यापार का केंद्र टोक्यो का मरुंची क्षेत्र, पृष्ठ संख्या 173। राजा के पद की स्थिति। सन 1914 के पूर्व की आधी शताब्दी में अनेक परिवर्तनों के बीच भी राजा के पद की परंपरा उसी प्रकार बनी रही जिस प्रकार जापान साम्राज्य के आरंभिक दिनों में थी। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, राजा के पद के प्रति आदर भाव बढ़ता गया। सन 1930 के बाद के 2 दशकों में, जब राष्ट्रीयता की भावना अपने उत्कर्ष पर थी, सम्राट तथा उसके प्रति निष्ठा को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया। अति सैन्यवादियों का मुख्यतः यही कहना था कि वे सम्राट के प्रति आदर भाव तथा उसको गौरवान्वित करने की अभिलाषा से ही प्रेरित है। 50 वर्षों की अवधि में 2 बार राज सिंहासन के वास्तविक अधिकारियों में परिवर्तन हुआ। सन 1912 में मेजी सम्राट मुत्सुहितो का अवसान हुआ, जिसकी राज्यकाल तथाकथित मेजी पुनर्स्थापना काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। उसके बाद उसका पुत्र योशिहितो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बना। उसके शासन काल को ताइशो शासन के नाम से पुकारा जाता है। सम्राट ताइशो लगातार अस्वस्थ रहता था, इसलिए सन 1921 में उसका पुत्र युवराज हिरोहितो राज प्रतिनिधि पद पर अधिष्ठित हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात हिरोहितो राज सिंहासन पर बैठा, यानी दिसंबर 1926 में, और इसके बाद ही सोवा काल का श्री गणेश हुआ। राज्यारोहण से पूर्व सम्राट शोवा देश विदेश का भ्रमण कर आया था, इसलिए उसे विश्व के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी थी। जापान के राजाओं की लंबी श्रृंखला में वह पहला राजा था जिसने ऐसा किया था। वह सैन्यवादियों के अतिवादी उपायों के पक्ष में न था, लेकिन वह अपने प्रभाव का प्रयोग केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकता था, सार्वजनिक रूप से नहीं। जब युद्ध अधिक निकट प्रतीत होने लगा तो उसका राजनीतिक महत्व कुछ घट गया और सैन्यवादियों ने सम्राट के पद का उपयोग अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए किया। राष्ट्रीयता पर देवत्वारोपण तथा शिंतो धर्म। राष्ट्रीयता के प्रति उत्कट पूजा भाव ने, जिसका प्रतिनिधित्व शिंतो मत ने किया, तथा जापान एवं वहां के राजपरिवार की परंपरा के उद्गम की काल्पनिक कथाओं के अध्यापन ने देशभक्ति की भावना को प्रबल तथा पुष्ट किया। इससे पूर्व द्वितीय अध्याय में इसका उल्लेख किया जा चुका है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, शिंतो धर्म उन धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों की श्रृंखला की एक कड़ी है जिसका प्रारंभ ईस्वी के आरंभिक दिनों से जापान में चीनी संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रवेश से पूर्व होता है। उस काल से शिंतो मत किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व बनाए रहा, यद्यपि कभी कभी यह अंशतः बौद्ध धर्म में आत्मसात कर लिया गया, लेकिन तोकुगावा शासन के अंतिम दिनों में इसे पुनर्जीवित किया गया। सन 1869 के बाद नए शासन का समर्थन प्राप्त करके इसने काफ़ी प्रगति की। राजकीय शिंतो और संप्रदाय शिंतो में भेद किया जाता था। संप्रदाय शिंतो को प्रशासन द्वारा बौद्ध धर्म एवं ईसाइत की कोटि में रखा गया था और राजकीय शिंतो को शुद्ध रूप से देशभक्ति का प्रतीक समझा जाता था। और इसका पर्यवेक्षण सरकार के एक भिन्न विभाग द्वारा किया जाता था। एक प्रकार से इसने एक नए धर्म की अनेक विशेषताओं को ग्रहण कर लिया था। यह राज परिवार के पूर्वजों तथा राष्ट्र के वीर पुरुषों का धर्म था। जापान में इसके अनेक मंदिर थे जिनमें कुछ पाठशालाओं में भी स्थित थे। इनमें से कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उदाहरणार्थ एक मंदिर इसे में है जिसका संबंध राज परिवार के उद्भव से जोड़ा जाता है। दूसरा टोक्यो में मेजी सम्राट के नाम पर बना मंदिर है तथा ऐसा ही एक तीसरा धार्मिक स्थल टोक्यो में है जो युद्ध में शहीद राष्ट्रीय वीरों की स्मृति में बनाया गया था। जापान में पदासीन सम्राट तथा उसके पूर्वजों को देवतुल्य समझा जाता था। सन 1890 में शिक्षा के संबंध में जारी की गई राजकीय घोषणा का नियमित रूप से समय समय पर और अत्यधिक आदर के साथ विद्यालयों में पाठ किया जाता था। यह राजकीय घोषणा कन्फ्यूशी नीति सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें इस बात की घोषणा की गई थी कि जापान में राज सिंहासन का उद्भव स्वर्ग और पृथ्वी के सृजन के साथ हुआ था। प्रत्येक विद्यालय में सम्राट का एक चित्र होता था जिसकी हर प्रकार से रक्षा की जाती थी, चाहे उसके लिए अध्यापक को अपने प्राणों का ही उत्सर्ग क्यों न करना पड़े। युवकों के प्रशिक्षण में शिंतो धर्म, इसके कर्मकांड एवं देवताओं की शिक्षा तथा प्रजा में उसे स्वीकार करने तथा धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित होने की शिक्षा दी जाती थी। जापान का शिक्षित वर्ग इस तथ्य को भली भांति जानता था कि जापान एवं राज परिवार के दैवी उद्भव की कथाएं कपोल कल्पित हैं और उनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, लेकिन वे अपनी सम्मति प्रकट करने का साहस नहीं कर सकते थे। विशेष रूप से ऐसे समय में तो बिल्कुल नहीं जब देश में युद्ध की मनोवृत्ति प्रबल हो, जैसे 1930 से 50 के बीच जब जापान भीषण युद्ध के दौर से गुजर रहा था। जनसाधारण एवं शिक्षित वर्ग पर शिंतो धर्म का सामान्य प्रभाव यह था कि वह समझने लगा कि जापान के लोग अन्य देशों के लोगों से कहीं अधिक उत्कृष्ट हैं तथा विश्व में उसके देश को एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करनी है। इसी के साथ जापान की अजेयता और सम्राट के प्रति श्रद्धा भाव का धर्मार्थतापूर्ण विश्वास भी जुड़ा हुआ था। अन्य नई धार्मिक गतिविधियां। जापान के जीवन पर अभी तक बौद्ध धर्म का प्रबल प्रभाव था, यद्यपि उसकी शक्ति क्रमशः छिन्न होती जा रही थी। यह चीन अथवा कोरिया की अपेक्षा जापान में कहीं अधिक प्रबल था। इस धर्म के अनुयायियों में अनेक योग्य भिक्षु थे तथा बदलते हुए युग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने आप को उनके अनुरूप ढालने में उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया और युग द्वारा प्रस्तुत नई समस्याओं के समाधान के लिए नए उपायों और संस्थाओं का विकास किया। संप्रदाय शिंतो एक विशिष्ट दैवी शक्ति पर आधारित था। इसका उद्भव इसके संस्थापक के क्रियाकलापों से हुआ था। एक मत इस धर्म का उद्भव एक स्त्री से मानता है, जिसका विश्वास था कि उसे स्वतः लिखित रूप में दिव्य संदेश प्राप्त हुए थे। कुछ धारणाएं तो इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि सरकार ने उन्हें खतरनाक समझकर दबा देने का प्रयत्न किया। सन 1890 से 99 में ईसाइत को जो धक्का पहुंचा था, उससे वह उबर चुका था तथा उसके प्रभाव और उसके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी। रोम के कैथोलिक या पूर्वी ईसाई संप्रदाय की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट मत के विभिन्न रूपों ने अधिक अनुयायियों को अपनी ओर आकृष्ट किया। कैथोलिक मत को 1917 के बाद रूस में उनकी मूल संस्था पर होने वाली विपत्तियों के कारण काफी हानि उठानी पड़ी। ईसाई धर्म के अनुयायी प्रधान रूप से नगरों में रहने वाले थे और प्रोटेस्टेंट मत को अधिकांशतः भूतपूर्व समुराई वर्ग का तथा उस व्यवसायी वर्ग का समर्थन प्राप्त था जो विशेष रूप से पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित थे। इसमें मुख्य रूप से मध्य वर्ग के लोग थे। इस धर्म का महान नेता कागावा न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति था, जो पश्चिम के प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों में अत्यंत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित था। स्वभावतः विदेशियों के नियंत्रण से मुक्त रहने के इच्छुक जापानियों ने प्रोटेस्टेंट मत के गिरजाघरों को पश्चिमी देशों की आर्थिक सहायता से मुक्त कर दिया तथा प्रशासनिक पदों पर पश्चिमी लोगों के स्थान पर जापानियों को नियुक्त किया। सन 1940 और 1941 में सरकार के दबाव के कारण गिरजाघरों में प्रशासनिक पदों से पश्चिम के लोगों को हटाने तथा विदेशों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को रोकने का कार्य तेज हो गया। फलस्वरूप लगभग सभी प्रोटेस्टेंट मतानुयायी चर्च ऑफ क्राइस्ट इन जापान नामक नई संस्था के अंतर्गत संगठित हो गए। यद्यपि जनसंख्या के अनुपात में वहां पर ईसाई मतावलंबी 1% से भी कम थे, लेकिन वहां के जीवन पर ये इस अनुपात की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव डाल रहे थे।